नमस्ते दोस्तों, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में मैं मिताली आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने हॉल्ट के बारे में सुना था कि कैसे अगर हम हंग्री, एंग्री, लोनली या टायर्ड होते हैं तो ये जो हॉल्ट कॉन्सेप्ट हमको डॉक्टर सचिन ने बताई थी बहुत ही अच्छी थी कि ये सिचुएशन में हमको कोई भी परमानेंट डिसीजंस या लंबे जो इफेक्ट करने वाले डिसीजंस है वो हमको नहीं लेने चाहिए। मुझे विश्वास है कि आपने इस पर जरूर विचार किया होगा। आज भी हम नए सीक्रेट के साथ आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। हमेशा की तरह डॉक्टर सचिन मेरे साथ स्टूडियो में है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति, नमस्ते।
ओम शांति।
पिछले सत्र में हम चर्चा कर रहे थे मूड के बारे में और काफी कुछ गहराई से आपने हमें कई बातें बताई हैं, लेकिन मैं पूछना चाहूंगी आपको कि कई लोगों का जो मूड है जो बार बार चेंज होता है, बहुत इम्प्रेशंस अंदर है जो वो इम्प्रेशन वो चेंज करना नहीं चाहते या वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चले गए। हम बहुत बार बताते भी हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज चली गई है वो निकलना मुश्किल है, या तो फिर अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को कुछ अच्छे सजेशंस देते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड सुनता भी है। तो ये जो इम्प्रेशन डीप रूटेड है उसको हम कैसे निकालेंगे?
अवेयरनेस इज द की। आपको जागरूक रहना पड़ेगा। जो हॉल टेक्निक हमने बताई
जी,
मैं कई बार देखता हूँ मनुष्य और जो गाड़ियां रास्ते पे चलती है उसमें काफी सारे समानता हम देखते हैं। जैसे हाईवे पर गाड़ियां जाते हैं, चलाते हैं ना, आपने बहुत सारे स्लोगन लिखे होंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्लोगन लिखे रहते हैं कि मन के ऊपर नियंत्रण रखो, या फिर एक जो स्लोगन हॉल्ट टेक्निक का जो निकला वो इसी तरह से निकला। हॉल्ट का मतलब होता है रुकना,
रुकना।
तो बहुत जगह पे रास्ते पे टर्न जहाँ होता है ना, तो वहां बोलते हैं कि रुको, देखो और आगे बढ़ो। तो ये रुकना बहुत जरूरी है। जब रुकेंगे तब हम देखेंगे और तब हम आगे बढ़ेंगे। जो स्पीड है, स्पीड बढ़ते जा रही है। हम अभी 2015 में है और काफी साल पहले, मेरे ख्याल से 2000 में एक किताब आई थी जिसका नाम था बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट। मैंने एट द स्पीड ऑफ थॉट लोग बिजनेस कर रहे हैं, और अभी हम देख रहे हैं एक्सीडेंट का भी जो कारण है वो बहुत स्पीड से जब जाते हैं ना और अचानक टर्न आ जाता है, रोक नहीं पाते हैं या देखते नहीं है, तब एक्सीडेंट होता है।
अटेंशन नहीं होता है, बहुत जगह पे डाइवर्ट अटेंशन है आपका।
तो स्पीड को रोकना, इसलिए मैं फिर से वो तीन शब्द ले रहा हूँ। हॉल्ट माना रुको, रुको, देखो, आगे बढ़ो। तो रुकना और देखना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन माना कुछ घर बार छोड़ना नहीं है। जो आपने सबकॉन्शियस माइंड का बताया कि जब कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि सर मैं चाहता नहीं हूं फिर भी हो जाता है, इसका मतलब उसके सबकॉन्शियस माइंड से एक प्रोग्राम आता है और उसको लेके जाता है, उसको पता भी नहीं चलता है। इसलिए आप घर पे है और आपके घर में चोरी हुई और आपको पता भी नहीं चला
जी।
और चोर कोई और नहीं है, हमारे ही कुछ ऐसे आदतें हैं जो हमारे विवेक को हर लेती हैं। इसको हम ऐसे बोलते हैं कि जब भावना बहन आती है तो विवेक को लेके जाती है,
विवेक भाई को लेके
उसका हरण हो जाता है। इसको विवेक का हरण माना बुद्धि का हरण हो जाता है। तो ये हरण क्यों होता है कि हमारे सबकॉन्शियस में एक प्रोग्राम पड़ा है हमारे अंतर मन में जो अचानक आता है और हमको पता है गलत है, इससे मेरे को नुकसान हो सकता है, मेरा जॉब जा सकता है, मेरे रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, मैं जेल में जा सकता हूँ, सब पता है, लेकिन वो आता है और लेके जाता है। तो ये जो कड़ा संस्कार जो आपने कहा या कड़े ऐसे पैटर्न्स है हमारे सबकॉन्शियस में,
मेरे अंदर जितने जिस भी बातों पे लाइट आएगी
उतना मैं जागरूक होता जाऊंगा, उतना मैं एनलाइटन होते जाऊंगा। एनलाइटनमेंट शब्द बहुत अच्छा है। एनलाइटनमेंट जिसको हम योगी कहते हैं, जो सदैव जागृत रहता है। योगी तो नींद में भी जागृत रहता है, स्वप्नों में भी कुछ ऐसी बातें आती है जो नहीं आना चाहिए, आपके कॉन्शियस के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो योगी खट करके उधर रोक लेगा। तो ये बातें हमारे अंधेरे से आती है। तो जो लोग कहते हैं कि ये पैटर्न है मेरे अंदर कि मैं चाहता नहीं हूं, हो जाता है या अचानक आ जाता है, तो वो अंधेरे में है। उसके ऊपर सिर्फ लाइट फेंकना, और वो लाइट है आपके जागृति का लाइट, अवेयरनेस टॉर्च बोलते हैं। तो जब हम उस प्रकाशित अवस्था में रहते हैं, माना जब हम अपने अंतर मन के प्रति सदैव सजग रहते, जागृत रहते, तो उसका फायदा ये होता है कि मुझे पता चलता है कि अब ये पैटर्न आ रहा है ना, मेरे अंदर वो भावना आ रही है, आ रही है, आ रही है, और मेरे को लेके गए। तो जब हम देखना चालू करते खुद को, और मेडिटेशन में यही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि खुद को देखना चालू कर देते हैं
जी,
तो जब मैं देखता हूं मेरे अंदर के पैटर्न के, ये पैटर्न मेरा इमर्ज हो रहा है बहुत अच्छी तरह से, स्पष्टता से उसको देखना चाहिए। मुझे समझ में आता है कि मेरे को गुस्सा आता है, अरे समझ में आने से कुछ नहीं होता है, उसको आपको परिवर्तन करना आना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप इसको सबकॉन्शियस को बदलना है तो अपने आप को देखना आना चाहिए कि मेरे अंदर आ रहा है ये पैटर्न, कंटिन्यूस देखना चाहिए। फिर आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सी परिस्थिति में वो पैटर्न आता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपको पैटर्न वो आता है, आपका इमर्ज होता है अंदर से। जैसे कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि सर वैसे मेरे को गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तब मेरे से रहा नहीं जाता है।
कोई स्पेशल परिस्थिति या कोई व्यक्ति
व्यक्ति है या कुछ ऐसी घटना है जिससे मेरे को पूरा पैटर्न मेरा अंदर से बाहर आ जाता है। जब मैं अकेला फील करता हूँ, क्या कारण है, वो पैटर्न को देखो आप, कब आपका इमर्ज होता है वो। और उसको देखने के बाद सेकेंड स्टेज, आपके अंदर अगर शक्ति नहीं है तो जैसे हमने पहले भी देखा, यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ समवन, एंड द बेस्ट फ्रेंड कैन बी नथिंग लाइक ऑलमाइटी अथॉरिटी, माना परमात्मा के सिवा दूसरा और कोई सहायक होना मुश्किल है। अगर अच्छा है कि आपका कोई दोस्त हो जो आपकी बातों को समझे, आजकल ये काम काउंसलर्स करते हैं, काउंसलर हम खुद काउंसलर है, और काउंसलिंग में बहुत सारी कॉन्फिडेंशियलिटी, माना आपकी बातें बहुत महत्वपूर्ण रहती है, उसको गुप्त रखा जाता है, तो वो काउंसलर्स को भी आप मदद ले सकते हैं। लेकिन राजयोग में हमने देखा कि खुद के प्रति सजग होकर हम परमात्मा से बात करके परमात्मा से शक्ति लेते हैं, तो उन पैटर्न्स को जो मेरे अंदर प्रोग्रामिंग हुआ है, जो ऑटोमेटिक चलता है, इसको बहुत अच्छे अच्छे शब्द दिए हैं, ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स, जैसे एंट बोलते हैं इसको, अपने आप, जैसे एंट माना चीटी, चीटी काटती है, वैसे ये ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट अंदर ही अंदर अपने को काटते रहते हैं। तो इन एंट्स को बदलने के लिए पहले उस एंट्स को जानना पड़ेगा मुझे, कौन से एंट्स मेरे अंदर है। तो जितना हम खुद को देखते हैं तो मेरा पैटर्न मेरे को पता चलता है। उसमें का एक पैटर्न हमने देखा कि आप अपने काम में बहुत माहिर है, आप फर्स्ट क्लास है, या आप परफेक्शनिस्ट है, ये आपका एंट है, पर सब लोग वैसे नहीं है ना, तो क्या होता है कि वो गुस्सा बढ़ते जाएगा, क्योंकि आप अकेले अच्छे हैं पर 99% आपके जैसे नहीं है, उनका वो लेवल नहीं है।
जब दो अपोजिट पर्सनालिटी साथ में आती है तब भी ये बहुत ज्यादा मूड स्विंग होने का बढ़ता है, ये भी हमने कई जगह पर ये इसको देखा है, कई व्यक्तियों में ये देखा है।
हमने पहले भी देखा कि आप दूसरे को नहीं बदल सकते इस दुनिया में, आपको सामने वाले के अनुसार मोल्ड होना आना चाहिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर वैल्यूज ऑफकोर्स। माना किसी को आप सुधारने के लिए अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमको मैसेज स्क्रिप्चर से या शास्त्रों से मिला है। जैसे सीता का इंटेंशन अच्छा था कि भिक्षा मांगने आया है, उसको मदद करनी चाहिए, भाव बहुत अच्छा था, तो मदद करने के लिए सिर्फ एक ही गलती नहीं करना है कि लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करनी है, तो वो फिर गड़बड़ हो जाते, फिर आप शोक वाटिका में जाएंगे, दुखी हो जाएंगे
जी।
तो मदद जरूर करना है पर मर्यादा में रह के मोल्ड होना है। इसको हमको परमात्मा ने सिखाया कि उसको कहते हैं कि जैसे सच्चा सोना जो होता है उसके अंदर ये पावर होती है कि वो कभी भी मोल्ड हो सकता है, माना खुद को परिवर्तन कर सकता है। अगर परफेक्शन का ही जो आपने बताया कि परफेक्शन वाले लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं, जैसे अभी ये कप इधर रखा है, अगर परफेक्शन वाला व्यक्ति होगा, अगर उस कप को वहां से किसी ने हिलाया तो बस उतना काफी है उनके लिए, किसने हाथ लगाया, क्यों हिलाया, ऐसा क्यों करना चाहिए, जब आपको पता है कि ये चीज यहाँ पे ही होनी चाहिए। अरे बाबा आप परफेक्ट है पर बाकी परफेक्ट नहीं है ना, मैनेजर सभी नहीं बनते हैं, कुछ लोग क्लेरिकल रहेंगे, कुछ लोग प्यून रहेंगे, वो उनकी लेवल है
जी, जी।
हाँ आपको अगर लगता है कि वो भी मैनेजर बने तो आप उनको प्यार से चलाओ, पर ऐसे नहीं हो सकता, आप उनको प्रोग्राम करो, उनको प्यार से समझाओ कि इसको ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा, ये अच्छा दिखता है, इससे शोभा बनाई रखती है। पर ये लोग क्या होते हैं कि जब लोगों से गलती होता है ना तो ये लोग गुस्सा कर देते हैं,
क्योंकि लोग सुनते नहीं है ना।
हाँ
मतलब नेचुरली हम घर में भी देखते हैं, हम दो बार तीन बार प्यार से बताते हैं, लेकिन अगर नहीं सुनते हैं तो फिर हमको गुस्सा करके बताना पड़ता है तो सुन लेते हैं।
लेकिन उससे क्या है, परमानेंट चेंज नहीं आता है, दूसरा मेरा नुकसान हो रहा है जब भी मैं गुस्सा कर रहा हूं। मैंने गुस्सा माना क्या है, जो हमने सीखा है कि गुस्सा माना दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। अगर दूसरा गलती कर रहा है, मैं मेरा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ाऊं, बिना मेरा कंट्रोल अपने ऊपर का खोए बगैर भी मैं काम करवा सकता हूं ना। तो ये कला है, इसको सीखना पड़ेगा। बात आती है कि वो पैटर्न्स को बदला जा सकता है, जहां जरूरत है वहां परफेक्ट तो होना ही पड़ेगा, पर हर जगह पे परफेक्ट होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा आपको बैलेंस में आना पड़ेगा। और ये छोटी छोटी चीजें, इधर ग्लास क्यों रखा, ये चीजों से देखो आप बताए जरूर उसको, साफ सुथरा और स्वच्छ रखे। टू मच उसमें जब जाते हैं ना, तब वो बॉर्डर लाइन कहीं ना कहीं क्रॉस होती है। तो स्वच्छता अच्छी है, एवरीथिंग ऑर्गेनाइज रखना भी अच्छी है, पर कभी अगर हो जाता है डिसऑर्गेनाइज किसी कारणवश, तो उस वक्त अपना आपा नहीं खोना चाहिए।
लेकिन जो क्लीनलीनेस वाला इंसान है उस वो छोड़ नहीं रहा है, और जो दूसरा ट्रेट वाला इंसान है उससे वो हो नहीं रहा है। मतलब मेरे बहुत नजदीक के फैमिली में ये पिक्चर है, तो ऐसे समय पर हम कैसे करेंगे?
ऐसे समय पर तीसरे व्यक्ति को लाना चाहिए कि इसका काम तुम संभालो, यू डोंट लूज योर कंट्रोल, एट द सेम टाइम मेंटेन द रिलेशनशिप। माना अपने रिलेशनशिप भी बनाए रखना है,
जी
काम भी हो जाए और उसको मैसेज भी जाए। अगर बार बार कहने के बाद भी कोई नहीं बदल रहा है, तो हमारा कहना नहीं छोड़ना चाहिए उसको, सिर्फ हमारा कहने का तरीका अच्छा होना चाहिए। माना अपना सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं खोना है, उसका भी रेस्पेक्ट को धक्का नहीं पहुंचाना है, लेकिन अपनी बात को भी जरूर कहना है। और इन द मीन टाइम अगर आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है वो काम करने का, तो किसी और के द्वारा वो करवा लेना चाहिए। देखो स्वच्छता अच्छी बात है, पर अति स्वच्छता बीमारी बन जाती है। हमने ऐसे लोगों को जिनको स्वच्छता का ऑब्सेशन हम बोलते हैं, माना ऑब्सेशन क्या होता है कि वो बाथरूम में स्नान करके आने के बाद भी बाहर आए और उनके मन में अगर ऐसा विचार आया, अरे बाप रे ये जमीन के ऊपर मिट्टी है, मेरे पैर को मिट्टी लग गई या हाथ को लग गई, वापिस जाके स्नान करेंगे, ऐसा विचार आया कि मेरे हाथ को मिट्टी लग गई, तो वो धोना चालू कर देते हैं। अब कितने बार हाथ धोएंगे आप? मैं एक बार दो बार समझ सकता, पर वहां तक ये लोग पहुंच जाते कि आपके हाथ की चमड़ी निकल रही है फिर भी हाथ धो रहे हैं, वो बीमारी का रूप ले लेते हैं। इसको कहते हैं स्वच्छता अति में जाना। तो इनके मन के अंदर हमेशा रहता है कि यहाँ मिट्टी है, वो मिरर के ऊपर मिट्टी है, यहाँ पे मिट्टी है, मैं कहाँ हाथ लगाऊँ, हाथ भी नहीं लगा सकते, तो कड़ी को हाथ लगाया, दरवाजा को हाथ लगाया, टेबल को हाथ लगाया, इनको हाथ धोना पड़ता है, तो इनका दिन भर का टाइम हाथ धोने में ही जाता है। तो स्वच्छता अति स्वच्छता में जाती है तो बीमारी पड़ जाती है, और परफेक्शन में जाती है तो तकलीफ होता है। तो हमको कहीं ना कहीं एक बैलेंस में लाना पड़ेगा, एट द सेम टाइम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। ऐसा ना हो कि हम बोले चलो छोड़ दो परफेक्शन नहीं चलते, गंदगी करता रहे, ऐसा भी नहीं मैं कह रहा हूँ। एवरेज स्वच्छता हो, ओवरऑल ठीक हो, पर टू मच उसमें जाने से तकलीफ होता है खुद को और औरों को भी।
ऐसा कुछ साइंटिफिकली है जो आपको मालूम है कि रात को जैसे हम सोते हैं या सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, तो उसका कुछ इफेक्ट रहता है सबकॉन्शियस माइंड से चीजें निकालने के लिए?
सुबह या रात की बात इसलिए कही गई कि उस समय हमारा माइंड सजेशन को इमीडिएटली एक्सेप्ट करता है। रिलेटिवली हम उस समय फ्रेश या अल्फा स्टेज में रहती है, जो स्टेज हमारे माइंड को सजेशन इमीडिएटली एक्सेप्ट करती है। पर अगर आपका माइंड दिन भर में भी सजेशन एक्सेप्ट करता है, तो जरूरी नहीं केवल रात को और सुबह दे, कि रात को सोने से पहले, क्योंकि आप पूरा 8 घंटा सोते हो रात को, तो रात को देंगे तो 8 घंटे तक वो थॉट आपके अंदर रहेंगे। पर ये जरूरी नहीं है कि आप कभी भी सजेस्टिबल स्टेज में अपने को लेके जाए, इसको सेल्फ हिप्नोटिज्म या स्व सम्मोहन भी कहते हैं, जिसमें हम अपने आप को उस अल्फा स्टेज में लेके जाए। अभी अल्फा स्टेज कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने आप को रिलैक्स करो शरीर और मन से, और अपने आप को केवल आप पॉजिटिव थॉट से समझाओ, तो आप उस स्टेज में है। इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टेंस, माना आपकी बुद्धि को वो संकल्प स्वीकार कर लेना चाहिए। ये थॉट पैटर्न्स होते हैं जो हमने देखा ना, तो थॉट पैटर्न माना विचारों की एक श्रृंखला होती है, विचारों का एक वृत्ति होती है, तो वृत्ति से वृत्ति को हम परिवर्तन कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि लोहे से लोहा को काटा जा सकता है। ऐसे लोहे को लोहे से काटा जाता है ना, तो वैसे ही संकल्प का पैटर्न है, उसको संकल्पों से रिप्लेस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ऐसा विचार है कि मेरा नेचर उतावला है, मैं हमेशा जल्दबाजी में रहता हूँ, ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है हम देखते हैं, क्योंकि हम 2015 में बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट, सब काम हमको चुटकी में चाहिए, तो कुछ लोग हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि हरी सिकनेस, हरी माना जल्दबाजी की बीमारी। हर चीज उनको जल्दी जल्दी चाहे, फिर वो कपड़े भी जल्दी पहनेंगे, खाना भी जल्दी खाएंगे, चलते समय भी फास्ट चलेंगे, और एक समय ये लोग 10 काम करने की कोशिश करते हैं और उनको लगता है ये बहुत बड़ी बात है, मल्टीटास्किंग कहते हैं। बट हमको अभी ये महसूस हुआ है कि एक साथ आप अनेक काम करने जाएंगे, गलती होने के चांसेस है और आपका प्रेशर बढ़ने के चांसेस है। हरी सिकनेस वाले लोग हैं, ये पैटर्न है एक। और ऐसे लोगों में अभी हमको पता चला है कि शरीर के अंदर उनके स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं, और ऐसे जो लोग होते हैं जो अपने परफेक्शनिस्ट देखे, हर काम उनको परफेक्ट चाहिए, टाइम कॉन्शियस बहुत रहते हैं और जल्दबाजी में रहते हैं, ऐसे लोगों को हार्ट की बीमारी जल्दी पकड़ती है। इनको टाइप ए पर्सनालिटी कहा गया है।
अच्छा,
तो अगर मेरा ऐसा पैटर्न है कि मुझे हमेशा पहला आना है, मैं हमेशा हर काम परफेक्ट करना चाहता हूँ, मैं बहुत टाइम का बारे में कॉन्शियस हूँ, जैसे कि किसी को टाइम दिया 3 बजे पर वो 3:45 बजे से तैयार है, और 3 को 1 मिनट हुआ तो इनका गुस्सा चला है, हमको 3 बजे बोला, हम 15 मिनट पहले आए हैं, और हमारे टाइम का किसी को वैल्यू ही नहीं है, ये लोग का कंट्रोल चला जाता है। तो वेरी टाइम कॉन्शियस, परफेक्शनिस्ट, और हमेशा फटाफट जल्दी जल्दबाजी में रहने वाले।
ट्रैफिक में भी अगर लेट होता है तो बहुत गुस्सा
आ जाता है। इवन खाने का टाइम भी, अगर मेरा 1 बजे का टाइम है, खाने का खाना नहीं मिला मुझे टाइम पे, सो आई लूज माई कंट्रोल। तो ऐसे लोगों का अगर पैटर्न है, समझो किसी का ये टिपिकल टाइप ए पर्सनैलिटी का पैटर्न है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही मेरे अंदर वो प्रेशर आ जाता है, कम ऑन फटाफट रन, ऐसे लोगों को ऐसे लगता है कि कोई तो उनके सिर के ऊपर बंदूक लेके खड़ा होता है और बोलता है रन, भाग, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। तो उनके अंदर वो प्रेशर रहता है अंदर। तो उस समय अगर मेरे को पता चल रहा है कि अभी जल्दबाजी में कर रहा हूं, है ना, मैं सब कुछ फास्ट करना चाहता हूं, लेकिन इतना जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, आई कैन रिलैक्स। तो उस समय जैसे ही यह पैटर्न मेरे अंदर से आता है और मैं जल्दबाजी करने लगता हूं, उस समय स्वयं को सूचना रिलैक्स, अपने आप से 3 बार बात करने का, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, या ब्रह्मा कुमारी का जो शब्द है, ओम शांति शांति शांति, शांत हो जाओ, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, कोई आग लगी हुई नहीं है, ठीक है ना।
पर देखने में आता है कई बार जब जल्दबाजी वाले पाचन के लोग होते हैं, क्योंकि मेरे में भी थोड़ा वो तो है, वो समय पर जब पूरा होता है तो बड़ा मजा आता है।
मजा आता नहीं, वो जल्दबाजी का पैटर्न कैसा है, जैसे ही पूरा हुआ ना, उनके सामने दूसरा टारगेट खड़ा है, फिर से फिर उनको भागने पे मजबूर कर रहा है। मेरे को यही कहना है कि जो काम 10 मिनट लगता है, आप उसको 3 मिनट में करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 10 मिनट का काम 3 मिनट में कोशिश, ये कला है, पर उसमें आपके शरीर और मन के ऊपर इफेक्ट नहीं आना चाहिए। वही काम आप रिलैक्स होके भी कर सकते हैं। दूसरी बात, वही काम आप जल्दबाजी में करने जाएंगे, आप भूलने के चांसेस है, गलती होने के चांसेस है।
नहीं, अंदर से वैसे
अंदर से अगर शांत है तो वो जल्दबाजी का नेचर नहीं कहेंगे। जल्दबाजी का नेचर वाला क्या होता है, माना बहुत सारी चीजें एक साथ करने जाता है, फटाफट करने जाता है। अभी खाना खाने के लिए आराम से आपको कम से कम 15 मिनट तो लेना चाहिए, ये लोग 5 मिनट में खाना खा के पूरा हो जाते हैं। वो भाग रहे हैं अंदर, है ना, ये भागना जो है ये पैटर्न है। गाड़ी भी चला रहे हैं तो उनको हर चीज, गाड़ी भी फास्ट चलाएंगे, मतलब यहाँ से आपको यहाँ जाना है आप आराम से जा सकते हैं, पर वो हमेशा 60 के बाद 80 डायरेक्ट उनका टॉप गियर में ही गाड़ी चलेगा, और गाड़ी में अगर रोकने की कोई कोशिश करता है तो भी उनको गुस्सा आता है। मैं समझ सकता हूँ कि अगर आपको लेट हो रहा है और आप जल्दबाजी कर रहे हैं, लेट नहीं हो रहा है फिर भी जल्दबाजी का नेचर है, ये जल्दबाजी का नेचर हम कहते हैं।
इसके अपोजिट कई लोग बहुत स्लो भी होते हैं, मतलब टू मच स्लो होना वो भी तो एक नहीं है ना, क्योंकि कई चीजें बहुत ज्यादा पेंडिंग रहती है, कई चीजों के डिसीजन लाइफ में नहीं होते, और डिसीजन नहीं होने की वजह से फिर पूरी लाइफ आपको उसके लिए एक,
इसलिए हम कहते हैं कि मूड में बैलेंस में लाना चाहिए। टू मच स्लो और टू फास्ट दोनों एक्सट्रीम हो गए। तो टू मच स्लो वाले जो लोग होते हैं वो भी पर्सनालिटी है। जैसे जल्दबाजी लो वाले लोग क्या कहते हैं, कल करना है सो आज करना है अभी इसी वक्त छुटकी में। जो टू मच स्लो वाले बोलते हैं कि आज करना है सो कल करना है परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों। तो ये लोग इतने सुस्त रहते, रिलैक्स रहते कि उनको कभी टेंशन नहीं रहता, पर उनके साथ वालों को टेंशन आ जाता है, क्योंकि ये लोग बहुत स्लो रहते हैं, तो बहुत स्लो होना या बहुत फास्ट होना, ये दोनों हम कहीं ना कहीं बैलेंस को खो रहे हैं। आप रियलिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक टाइम में रहो, एवरेज टाइम में रहो, बीच में रहो, तो वो एक्सेप्टेबल है। तो हमको यहाँ पे क्या सीखना है कि कहाँ पे जल्दबाजी करनी है, कहाँ पे टोटली रिलैक्स रहना है, ये परखने की शक्ति हमारे अंदर चाहिए, और ये परखने की शक्ति मेडिटेशन से आती है। अभी मेरे पास कोई पेशेंट आया इमरजेंसी, तो आई हैव टू एक्ट फास्ट। अगर आईसीयू में पेशेंट है, उसको वीटैक है, माना हार्ट का एक ऐसा पैटर्न है कि हमको इमीडिएटली शॉक देना पड़ता है, इंजेक्शन देना पड़ता है, अगर हम नहीं काम करेंगे तो वो चला जाएगा। तो कई जगह पे यू हैव टू बी ऑन योर टोस, कई जगह पे यू हैव टू रियली रिलैक्स, है ना। तो हर बार भागने की जरूरत नहीं, हर बार इमरजेंसी नहीं होती, और हर बार बिल्कुल सुस्त होने की जरूरत नहीं। जैसे किसी काम को करने का टाइम अगर 10 मिनट है, तो आप उसको 3 मिनट में करते हो तो फास्ट हो जाता है, और आप उसको आधा घंटा लेते हो तो टू स्लो हो जाता है। आप 10 का 15 मिनट समझ सकते हैं, 10 का 8 मिनट भी समझ सकते हैं। तो उस रेंज में अपने को रहना बहुत जरूरी, विच इज एक्सेप्टेबल रेंज, और इस पैटर्न को हम बदल सकते हैं। अगर मेरे अंदर वो जल्दबाजी का नेचर आता है ना, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे कार भी फास्ट चलाएंगे, तो मैंने कहा क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा नहीं आप बताओ क्या कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि कार में जहां पे भी आपका वो स्पीडोमीटर है ना, उधर ही एक शब्द लिख दो, रिलैक्स एंड स्लो डाउन। तो जैसे उन्होंने वहां पे लिखा, वो भाग रहे, वो पढ़ने के बाद वो खुद स्लो हो गए। तो धीरे धीरे उनके माइंड के अंदर वो शब्द चला गया, रिलैक्स स्लो डाउन, रिलैक्स स्लो डाउन।
कुछ ना कुछ हमें बार बार फिर से याद दिलाए, ऐसा हम कुछ करें।
यस, माना मारामारी करना, हिंसा करना या एक्सीडेंट, ये सब बढ़ रहे हैं, क्योंकि सहन शक्ति और धीरज की कमी है।
कमी है,
तो ओवरऑल हम देख रहे हैं स्पीड का ही ज्यादा है, सुस्त लोग कम है।
और बहुत अच्छा लग रहा है ये सब बातें सुनते हुए मुझे, मतलब सुनने में इतनी अच्छी लग रही है। अगर करेंगे लाइफ में तो मैं समझती हूँ बहुत ब्यूटीफुल लाइफ हो सकती है हमारी। बहुत ही आज का मार्गदर्शन भी आपको बहुत अच्छा रहा। हम इसी पर फिर से एक गाइडेड मेडिटेशन अगर हम लेते हैं तो हमें बहुत हेल्प हो सकती है।
सभी अलर्ट होके बैठेंगे और अपने संपूर्ण शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ेंगे, सिर से लेके पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर हल्का होते चल, रिलैक्स। दोनों हाथ, दोनों पैर, छाती, पेट, पीठ की मांसपेशियां, गर्दन और चेहरा बिल्कुल हल्का रिलैक्स। गहरी सांस लेंगे और अपने आप को और हल्का करेंगे। ध्यान दो आंखों के बीच में लेके जाएंगे और देखेंगे एक सुंदर दिव्य प्रकाश दो आंखों के बीच चमक रहा है। मैं ये दिव्य प्रकाश हूं, इस शरीर से बिल्कुल भिन्न हूं। ये शरीर एक मंदिर है जिसमें एक दिव्य ज्योति प्रकाशित है। मैं बिल्कुल शांत स्वरूप, शरीर भारी है पर मैं बिल्कुल हल्का हूं। परमपिता परमात्मा जो कि निराकार ज्योति स्वरूप है, शांति के सागर है, उनका शांति का प्रकाश मेरी तरफ आ रहा है और मैं महसूस कर रही हूं कि वो शांति का प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। मैं शांत होते जा रहा हूं, शांत और रिलैक्स। मैंने महसूस किया कि ज्यादा जल्दबाजी या अति सुस्त, दोनों एक्सट्रीम है, मुझे बीच में रहना है। जल्दबाजी की वजह से भी बहुत नुकसान होता है और अति सुस्ती के वजह से भी नुकसान होता है। जहां आवश्यकता है वहां मैं अपनी स्पीड को जरूर बढ़ाऊंगा, और जहां आवश्यकता नहीं है वह मैं वह पर स्वयं को रिलैक्स रखूंगा। बीच में रहना मेरे लिए सहज संभव है, जब चाहे तब मैं अपनी स्पीड को बढ़ा सकता हूं और कम कर सकता हूं। बहुत कम परिस्थितियों में मुझे हमेशा स्पीड बढ़ाने की आवश्यक होती है। मेरे ज्यादा से ज्यादा कार्य मैं रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में कर सकता हूं और मेरे विचार और भावनाएं मेरे संपूर्ण नियंत्रण में है, क्योंकि सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मैं शक्ति स्वरूप हूं, सर्वशक्तिवान की संतान हूं। मैं अपने भावनाओं को नियंत्रण रख सकती हूं। मेरा मन और शरीर शांत होते जा रहा है। मैं अपने स्वभाव को परिवर्तित कर सकती हूं। निरंतर अपने को सकारात्मक विचार देने से मेरा स्वभाव परिवर्तित हो सकता है, मेरा सबकॉन्शियस चेंज हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा समय मुझे स्वयं को इन श्रेष्ठ विचारों में रममाण रखना है। मैं बिल्कुल रिलैक्स हूं, शांत हूं, प्रसन्न हूं। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति। मूड कैसे स्विंग होते हैं और क्यों होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, इस बात पर आपने बहुत विस्तार से हमें बताया। आपका अनेक धन्यवाद। नमस्ते।
ओम शांति।
दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने कई बहुत अच्छी बातों को देखा। डॉक्टर सचिन ने हमें बहुत अच्छे से बताया एंड ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स किस तरह से हमारे अंदर आते, ये पैटर्न कैसे तैयार होते हैं और इसे हम निकाल सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई भी बातें गहराई से गई हुई हो, कोई भी ट्रेड चाहे कितने ही पुराने हो, लेकिन अगर हम अवेयरनेस हमारा रहता है, अगर हम जागरूकता तैयार करते हैं तो ये हमारे पैटर्न निकल सकते हैं। आप इस पर जरूर विचार कीजिए। हम फिर एक नए सीक्रेट के साथ आपके साथ मुलाकात लेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।